नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि एचपी शिवा परियोजना किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के साथ साथ बागवानी क्षेत्र में नए अवसर प्रदान कर रही है। सुंदरनगर की खुराहल पंचायत में आज परियोजना से जुड़े नए क्लस्टर में चल रही गतिविधियों का जायजा लेने के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और बागवानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। बागवानी मंत्री ने एचपी शिवा परियोजना का क्रियान्वयन कर रही कंपनी के प्रतिनिधियों को निर्धारित लक्ष्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना से किसानों व बागवानों को आय के स्थायी साधन प्राप्त हुए हैं। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से धर्मशाला के समीप तपोवन में शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि ये सत्र अब तक का सबसे बड़ा शीतकालीन सत्र होने जा रहा है और इसे लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान विपक्ष के हर सवाल का तथ्यों सहित जवाब दिया जाएगा।
विपक्ष ने अपना कार्य करना है और तभी सभी बातों को देखते हुए कि विपक्ष अपना सारा पक्ष विधानसभा के अंदर रखे, जहां आपका मॉनसून सेशन भी आज तक का सबसे लंबा सेशन था, इसी तरह से विंटर सेशन भी लगभग कोई 8-9 दिन का है, वो अपनी बातें विधानसभा के अंदर रखे और सरकार भी हर तरह से तैयार रहेगी और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सारी सूचना उनको उपलब्ध करवाई जाएगी।
विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं द्वारा राजभवन घेराव करवाने और प्रधानमंत्री का पुतला जलवाने की घटना को शर्मनाक बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत के चलते कांग्रेस बेहद कुंठित है और ये घटना भी इसी कुंठा का परिणाम है। जयराम ठाकुर ने इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में संविधान पर इस तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि राजभवन की एक गरिमा है और सरकार को इसे बनाए रखने की जरूरत है। सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की योजनाओं को तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सोलन में आज जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक में उन्होंने योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर भी बल दिया। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य को भरपूर मदद मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पा रही है।
केंद्र के द्वारा भरपूर मदद की जा रही है और केंद्र हर क्षेत्र में, चाहे सड़कें हैं, चाहे पीने का पानी या इलेक्ट्रिसिटी की बात, आरडीएस प्रोजेक्ट चला है, जल जीवन मिशन में बहुत सारा पैसा केंद्र के द्वारा दिया गया। पीएमजीएसवाई के तहत केंद्र ने अभी हिमाचल प्रदेश को 2200 करोड़ रुपया समर्पित किया है और मेरे संसदीय क्षेत्र में भी उसमें बहुत सारी सड़कें आई हैं। फेज 3 में भी बहुत सारी सड़कें मिला था।
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में निरंतर सुधारात्मक कदम उठा रही है, जिसके चलते हिमाचल राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में 5वें स्थान पर पहुंचा है। बिलासपुर जिले के राजकीय विद्यालय भगेड़ के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार का आगामी लक्ष्य हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता से जोड़ना है, जिसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। राजेश धर्माणी ने विद्यार्थियों से मोबाइल का सीमित उपयोग करने सहित खेलकूद, योग, प्राणायाम और पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करने का आह्वान किया। विद्यार्थी संगठन एसएफआई ने विभिन्न मुद्दों को लेकर आज शिमला में राज्य सरकार के खिलाफ रैली निकाली। संगठन ने सरकार से बंद किए जा रहे स्कूलों व कॉलेजों को खोलने, छात्र संघ चुनाव बहाल करने, शिक्षण संस्थानों में पीटीए के नाम पर हो रहे कथित भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और युवाओं को रोजगार देने की मांग की है। इन्हीं मुद्दों को लेकर एसएफआई का वार्षिक सम्मेलन आज से ही शिमला में शुरू हो गया है। संगठन ने मांगे जल्द पूरा न होने पर आने वाले समय में विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी है। प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के 3 क्षेत्रों का तापमान माइनस में दर्ज किया गया है, जबकि कई बड़े शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। तापमान में भारी गिरावट के चलते जनजातीय इलाकों में जनजीवन प्रभावित होने लगा है। मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने और तापमान में गिरावट का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।